प्रणाम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुदास जी महाराज द्वारा दिनांक 9 अप्रैल सन 1992 को रात्रि लगभग 10:30 बजे हुआ।
इस दिन का मेला चल रहा है। महाराज ने बहुत संक्षेप में बात कही। यहाँ के संत बहुत हुए, खड़ा पे के संत बहुत ज्यादा हुए, बहुत हुआ। खड़ा पे सिद्धार्थी महाराज की वाणी बहुत विचित्र है, इधर से हृदय उदास जी महाराज की वाणी बड़ी विचित्र है। ये कविता की दृष्टि से भी दोनों विलक्षण है, विचित्र है। जाति महाराज की वाणी बहुत है, गुरु प्रकरण एक भागवत जैसा मेरा पोथा है। इनका उपदेश बहुत हुआ और संप्रदाय बहुत फैले और बहुत वृद्धि हुई, लोगों को बड़ा लाभ हुआ। संतों से लाभ होता है, जैसे भगवान का अवतार है, उभरे अवतार लेकर के दुनिया का कल्याण करते हैं, लीला से कल्याण करते हैं, ऐसे संत महात्माओं का भी अवतार माना है, वो भी नित्य अवतार कहते हैं। भगवान का नैमित्य का अवतार होता है, ये नित्य अवतार होता है। उनकी वाणी में ये बात है खास, सत्यगुरु और संत राम निरंजन देव, सत्यगुरु और संत राम निरंजन देव, तीन ये चीज है। एक महाराज, एक भगवान है, एक संत है, एक गुरु है। ये बातें हरेक संतों की वाणी माता है। कहीं कहीं इस विशेष कह देते तो भक्ति भगत भगवंत गुरुचार कह देते हैं, भक्ति भगत भगवंत गुरुचार, ये तो तीन कहते हैं। जितने संत हुए संतों की वाणी को देखा जाए तो इन तीनों का वर्णन है। विशेष बात ये वाणी देखने से मेरे को होश हुआ, मालूम हुआ कि ये तीन उपासना बहुत विलक्षण है। गुरु से प्रकाश मिलता है, जैसे सत्संग हम करते हैं ना, तो सत्संग से एक प्रकाश मिलता है, उस प्रकाश में साधक उस तत्व को समझता है। अभी जो पद बोल रहे थे उन पदों में बातें आई बहुत विचित्र मालूम जी मेरे को है। ये तो जब देखो जब सुनो जब पढ़ो तो बहुत विचित्र विचित्र बातें हैं। संतों की वाणी में बहुत विलक्षणता भरी हुई है, रखते नहीं। जितना वास्तव में अनुभव होता है उतना बुद्धि में प्रकाश नहीं होता, और बुद्धि में जितनी बातें समझ में आती है उतनी मन की कल्पना में नहीं आती। मन की कल्पना में जितनी आती है उतनी कहने में नहीं आती, और कहने में आती है उतनी लिखने में वाणी में नहीं आती। फिर भी लाभ होता है, और जितनी कहने में वाणी में आती उतनी श्रोताओं के कानों तक बातें नहीं पहुंचती, और कानों तक जितनी बातें पहुंचती है उतनी मन तक नहीं पहुंचती, और मन तक जितनी पहुंचती है उतने बुद्धि उसको ग्रहण नहीं करती, और बुद्धि जितना ग्रहण करती है उनसे अगड़ी स्वयं तक पहुंचती है। लाभ असली वहां होता है, बहुत कम पहुंचती है, परंतु प्रकाश बहुत विलक्षण आता है, स्वयं में एक अनुभव प्रकट होता है। ये परमात्म तत्व है सज्जनों, ये सबके पास है, पशु पक्षी और वृक्षों में भी है, परंतु वहां प्रकट होने का स्थान नहीं है। मनुष्य में ये विलक्षणता है, मनुष्य का मस्तक है नहीं, इसमें विलक्षण बात है, वे भाव प्रकट होते हैं, उन लोग जानते हैं। और वो प्रकट होता है, पैदा नहीं होता है। एक प्रकट होना होता है, एक पैदा होना होता है। प्रकट वो होती जो चीज पहले से होती है, प्रकट हो जाती है। और पैदा होने वो है जो पहले नहीं होती है, नई चीज होती वो पैदा होती है। इसमें अगर देखा जाए तो हिंदू परंपरा में विलक्षणता से देखा जाए तो इनमें कोई एक संत एक भगवान नहीं मिलेंगे, कई तरह की बातें मिलती है। मूल में परमात्मा रहेंगे, एक व्यक्ति नहीं रहेगा। एक बात और याद आ गई, जैसे यवन धर्म है, मुसलमानों का धर्म है, उसमें मोहम्मद मिलेंगे, दूसरे जितने जितने हैं उनमें एक एक व्यक्ति मिलेगा। ईसाइयों में ईसा मिलेगा, ऐसे हिंदुओं में अमुक आदमी है, ऐसा नहीं मिलेगा। भगवान मानते हैं, भगवान में साकार निराकार सगुण निर्गुण सब स्वरूप में होते हैं, वे परमात्मा होते हैं, परंतु वो प्रकट होती है चीज। जैसे हिंदू धर्म में ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है, संन्यास आश्रम है, ये वैज्ञानिक रीति से है। बालकपन है तो उसमें विद्या पढ़ाते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम के ब्रह्मचर्य का पालन करो, विद्या अध्ययन करो, ये खास बाल्यावस्था में बात होती है। इसके बाद फिर दो विचार हो जाते हैं, जो आबाद ब्रह्मचारी रहता है वो भजन में लग जाता है, और दूसरा ब्रह्मचारी उपकुर्वान होता है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी उपवान उपकुर्वान ब्रह्मचारी, दो तरह के ब्रह्मान होते हैं। मानो जन्म भर ब्रह्मचर्य का पालन करके भजन मन करो, अथवा शास्त्र की विधि के अनुसार विवाह करो, तो वो दो बात विवाह करो। वो बात क्यों हुई कि जो विषयों में आसक्ति है, प्रियता है पदार्थों में भोगों में, वो प्रियता विचार के द्वारा दूर नहीं कर सकते, तो फिर विवाह आदि करके गृहस्थ में रह करके उनका अनुभव करो। वो गृहस्थ वास्ते नहीं है, किंतु अपने समाधान करने के लिए वहां रह करके अनुभव करो। वो फंसने की बात नहीं, अनुभव करके फिर अपने वानप्रस्थ में चले जाओ, फिर वानप्रस्थ का तप करके फिर संन्यास में चले जाओ, फिर परमात्मा प्राप्त कर लो। ये क्रम हिंदुओं का विलक्षण है, विचित्र है, इस क्रम से सब चलते हैं। तो संत जितने हुए हैं वो इसी प्रणाली में हुए हैं। अब यह वैदिक प्रणाली होती है, एक संतों का होता है, वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम सनेहू। वेद पुराण और संत मत, ये संत मत एक और विलक्षण है, इसमें विचित्रता है, साधना की विचित्रता है। ये साधना का वर्णन संतों की वाणी में जितना मिलता है, संस्कृत ग्रंथों में ये प्रणाली बहुत कम मिलती है, एक दो उपनिषद में बात मिलती है, और विशेष मिलती नहीं है पद्धति। जैसे महाराज ने पांच स्थान कहे ना, अधमध उत्तम त्रियगरठानु, चौथे अति उत्तम स्थान, प्रथम राम रचना कर सुमर द्वितीय कंठ लगाए, तृतीय हृदय ध्यान दे, चौथे नाभ मिलाए, ये चार स्थान बताए, फिर पांचवा स्थान बताया है। तो ये स्थानों का इस तरह से वर्णन संतों की वाणी में खूब आता है। कबीर साहब है, लालू साहब है, रामदास जी महाराज है, रामदास जी महाराज है, रामचरण जी महाराज है, ये संत हुए, संतों की वाणी में इसका वर्णन खूब विस्तार से आता है। वो वाणी में मिलान करते हैं तो एक विचित्र ढंग की बात आती है। सम्मत 1972 के सम्मत में चातुर्मास में मैं जोधपुर में था, बालक ही था, 10-12 वर्षों का। उस समय मेरे को पढ़ाना शुरू किया, संस्कृत पढ़ाना। तो उस समय में कई वृद्ध संत थे, वे संत आपस में बात करते थे, मेरे को याद है थोड़ी थोड़ी ये बातें करते थे वो, मैं तो इतना समझता नहीं था, ना कोई इतनी बड़ी पढ़ाई थी, ना कोई बुद्धि थी ऐसी, ना ऐसा वैराग्य था, ये चीजें नहीं थी। परंतु मैंने पढ़ा तो वहाँ ये विचार चंद्रोदय, विचार सागर, ये पढ़ते इनसे मिलन करते थे, वाणी का मिलन करते थे, तो ये मैंने सुना। ये होश हमारे को पीछे हुआ, पहले मैंने पढ़ाई की, पढ़ाई के बाद आया तो मिलान करते थे, वो मिलान वाणी में मिलता नहीं, वाणी के साथ में इनका पूरा मिलता नहीं। तत्व वो तो उसी का ही वर्णन है, अभी नहीं आत्म में परमात्मा पाया, अभी पदों में ही आई बात, तो उसमें तो भाई सिद्धांत में तेज ठीक पहुंचते हैं, मगर साधन प्रणाली इनकी कुछ अलग है, विचित्र प्रणाली है, बहुत सुगम है। उसमें भजन के नाम जब की विशेष बात करी है, द्वारा में पाओ बसे जीव आत्म घटमाए, हरिया पय में घर से बिन मछिया को सुनाए, तो भजन से वो प्रकट होता है, तत्व प्रकट होता है, वो तत्व प्रकट होता है, वहाँ एक हो जाते हैं। वहाँ वेदांत और संतों की वाणी और जितने शास्त्र वो सब हो जाते हैं। इसमें भी एक विलक्षण बात है, क्या बताऊं मैं, विशेष है नहीं, याद भी इतनी और भक्त है जितना, समय भी नहीं है और समझाने की सामर्थ्य भी नहीं है इतनी, परंतु मैं देखा मैंने बहुत विलक्षण, ये न्याय विशेषक सांख्य योग पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा ये छह दर्शन है, छह शास्त्र है, चार वेद है, 18 पुराण है, 18 महापुराण, 18 अति पुराण, ऐसे नाम सुने उनके, 18 पुराण तो देखने में आते हैं, परंतु महापुराण, अति पुराण, 18 ऐसी बात सुनी है, देखने में नहीं आए वो। और संतों की वाणी बहुत विचित्र है, बड़ी विस्तार से है, स्मृतियां 18 है, ऐसे महाभारत की पर्व भी 18 ही है, अष्टादश अक्षोहिणी, अष्टादशी पर्व, अष्टादश दिन में मरे, अष्टादश दिन सर्व, ऐसा वर्णन आता है, विचित्र विचित्र बात है। उनमें एक बात की तरफ मेरा विचार आया, वो बात याद आ गई, जितने मत मतांतर है उन मत मतांतरों में भेद कहाँ तक रहता है, वो एक बात कुछ विलक्षण मालूम हुई। जैसे न्याय और सांख्य है, न्याय और विशेषज्ञ है, सांख्य और योग है, पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा छह दर्शनों के तीन विभाग है, मानो एक अलौकिक तत्व को बनने वाला विभाग है, और वेदों के जितने मंत्र हैं, उन मंत्रों पर विचार करने वाले उत्तर मीमांसा पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा पहले फिर उत्तर मीमांसा है, तो ये मीमांसा शास्त्र है। मीमांसा मानो विचार, वेदों के मंत्रों पर विचार करके जो दर्शन निर्मित हुए हैं उनको मीमांसा कहते हैं। वो मीमांसा दो तरह की है, एक दोनों अलौकिक है, परंतु एक संसार का स्वर्ग आदि का ब्रह्म लोक आदि का वर्णन करके ये है, एक उस तत्व का वर्णन करने के, तत्व के वर्णन करने वालों को वेदांत कहते हैं, अब वो उत्तर मीमांसा है, और लोगों की मर्यादा का वर्णन कर देखते हैं वो पूर्व मीमांसा है, ये अलौकिक तत्व वर्णन करने वाले हैं। और योग और सांख्य है और पूर्व में ये न्याय और वैशेषिक है, तो न्याय और वैशेषिक विशेष लोगों का लौकिक तत्वों का विचार किया, बड़ा गहरा विचार किया है, ये वर्णन है। इसके बाद फिर वेदांत और सांख्य है, तो सांख्य है उसमें सांख्य और योग, वेदांत नहीं, सांख्य और योग, तो इसमें लौकिक अलौकिक दोनों का वर्णन है, न्याय में वैशेषिक में लौकिक पदार्थ है, और पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा वेदों को लेकर अलौकिक का वर्णन है, और योग और सांख्य है इसमें लौकिक अलौकिक दोनों का वर्णन करके तत्व को बताया गया है, लोगों की साधना बताई गई है। ये साधन करते करते अगर ये सूक्ष्मता से जब पहुंचते हैं तो उसमें एक सूक्ष्म अहंकार रहता है, माफ करें क्षमा करेंगे मेरे पर कोई गुस्सा न करे, सूक्ष्म अहंकार रहता है, तब तक मतभेद रहता है, और वो सर्वथा मिट जाता है अगर फिर मतभेद नहीं रहता, उसके बाद में ये छह दर्शनों का छह विभाग नहीं रहता है। वो छह विभाग जब तक उस मत मतांतर का जो अपना अनुष्ठान है, अनुष्ठान के साथ लगा हुआ एक अहम है, अहम का सूक्ष्म संस्कार कहता है, वहां तक मत भेद रहता है। अब वो मिटने के बाद में फिर मत भेद नहीं रहता, फिर अलग अलग दर्शन नहीं रहते। अध्ययन करने वाले विशेष मत भेद तक ही पहुंचते हैं, मत भेद से अगर ही पहुंचने वाले बहुत कम हुए हैं। वैसे ग्रंथ भी बहुत कम मिलते हैं, एक एक मत के ग्रंथ मिलते हैं, विशिष्ट विशिष्ट है। छह दर्शनों के बड़े बड़े पुस्तक हैं और बड़ा गहरा गहरा अध्ययन है। ऋषि मुनियों ने, संत महात्माओं ने बहुत विचित्रता से इसका अनुभव किया है। चीजें अनुभव कर देखिए, अनुभव का नाम दर्शन है। दर्शन साक्षात देखना, तो देखना मात्र है, वो नेत्रों से होता है और एक भीतर बुद्धि से अंतःकरण से होता है। ये देखने का अर्थ दो होते हैं, तो देखने का अर्थ जो अनुभव करना है वे दर्शन कहलाते हैं। तो वे अनुभव के भी आपस में मत भेद रहता है, मत भेद है, इससे भेद से अगाड़ी जाने वाले ऐसे ग्रंथ वर्णन करने के बहुत थोड़े मिलते हैं, विशेष नहीं मिलते हैं। वहां तक साधना करते नहीं, और ये सब वहां तक पहुंच करके मत भेद करके फिर अगाड़ी पूर्णता में पहुंच जाते हैं। जितने संत महात्मा हुए हैं वहाँ एक परम पद है, वो उसको परम पद कहते हैं। ब्रह्म लोग आदि नहीं है, वो विचित्र ढंग है, उसमें भी गए हैं। यद गतिवानिवर्तनते तथा परम मम, जहाँ पर लौट कर नहीं आते, ऐसे तत्व को ग्रहण करने वाले वे दर्शन है। तो बात ये चली थी कि यहाँ आज जो ये महोत्सव हो रहा है, ये श्री हरिजामदास जी महाराज की बात बताई ना, जयमलदास महाराज हरिया जयमलदास गुरु राम निरंजन देव काया देवल देहरो सहज हमारी सेव। ये सहज सेव का वर्णन श्री हरिजामदास महाराज की वाणी में जितना देखा है मैंने और की वाणी में नहीं देखा इतना। सहज तन मन कर सहज पूजा, सहज सा देव नहीं और पूजा, सहज हमारे को सहज का सहज किया विश्राम, हरिया जीव शिव का एक नाम एक श्राम, इसका वर्णन बहुत विचित्र ढंग से किया है। सहज स्वाभाविक स्वतः सिद्ध है, उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, कनिष्ठा शास्त्र चिंता, तीर्थ यात्रा धमा धमा, तो उत्तमा सहजावस्था वो सहज चीज है, स्वाभाविक है, उसको बढ़ाना नहीं पड़ता है। ये निर्माण होता है, बढ़ाया जाता है, ये प्रकृति में, और प्रकृति से अतीत तत्व है वो तो खोजा जाता है। एक खोजना एक अन्वेषण दो चीज है। दूसरे संप्रदाय है, जैसे मुसलमान है, ईसाई है, बौद्ध है, और दूसरे यहूदी है और पारसी है, ये अलग अलग विभाग है इनके। मैं संपूर्ण मतों से परिचित नहीं हूँ इतना, परंतु उनके कुछ सुनी हुई बातें हैं, अध्ययन मेरा इतना नहीं है, तो उनमें बातों में सब में मूल में एक व्यक्ति मिलेगा। इन सनातन सिद्धांत में कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा, एक उदाहरण एक करने वाला। तो इनमें क्या है, ये खोज है, और व्यक्ति मिलेगा वहाँ उसकी शिक्षा है, उसके अनुसार वे चलना है, वो मार्ग है, उन्होंने कह दिया उसके अनुसार चलना है। तो वहाँ एक व्यक्ति का अनुभव है, यहाँ पर व्यक्ति का अनुभव न होकर तत्व की खोज है, अन्वेषण है। तो अन्वेषण से एक मानो ढूंढना, खोजना, खोजने से चीज वो मिलती जो पहले से मौजूद है, स्वाभाविक है, स्वतः तत्व है, और खोज करने से उस तत्व की प्राप्ति होती है। सीखना, याद करना, मनन करना, उसका ध्यान करना, समाधि लगाना, ये चीजें इधर उधर की है, इससे अगाड़ी खोज चलती है। उस खोज में, ढूंढने में वो चीज मिलती है, उसमें खोजे तो बहुत विचित्र बात मिलती है, वो सहजावस्था होती है, स्वाभाविक सबकी है। वो पशु पक्षियों की भी वो अवस्था रहती है, दुराचार दुराचार दुर्गुण करने रहने जिनमें रहते, ऐसे कसाई आदि भी वो बहुत क्रूर हिंसक मनुष्य भी ऐसे होते हैं, तो उनमें भी वो चीज रहती है, पशु पक्षियों में रहती है, पर पशु पक्षी उसको जान नहीं सकते। वो तत्व ऐसा मौजूद है कि जो सब जगह मौजूद है, दिल खोजा दिल पाए या गहरे पानी पैठ, तो वो जो खोजते है उसको चीज मिलती है, किसी मत में हो जाए, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, कोई ज्ञान हो, उसमें वो चीज मिलेगी, वो चीज मिलती है, तब ये मत भेद नहीं रहता आपस में। तो ये आश्चर्य आता है इसमें, तो बहत्तर समग्र चातुर्मास में जो बोलता राम मोहल्ले में, तो उस समय में बूढ़े संत आपस में बात करते थे, परिदास जी थे उधर, वृद्ध परिदास जी और राजा राम जी, परमदास महाराज के भाई, वे उनकी विचार करते थे, उसमें सुनता था कभी कभी, तो वो संस्कार याद है, वो वाणी के साथ मिलान करते थे, वाणी में उसको खोजते थे, ये प्रक्रिया मिल जाए, ये प्रक्रिया मिलती नहीं थी, उस समय कोई योग्यता ही नहीं थी, उस समय तो संस्कृत पढ़ना शुरू किया था, सबसे पहले एक श्लोक सिखाया, न तद भाषित सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम। ये श्लोक कहाँ का है, क्या है, मैं कुछ पता नहीं, परीक्षा करेंगे इस लड़के की बुद्धि कैसी है, संस्कृत में कैसा होगा पढ़ेगा, ऐसे अगर परीक्षा के लिए श्लोक सुखाया सिखाया था पहले ही पहले, तो अब याद आता है कि मेरे को पहले पढ़ाई में गीता का श्लोक सुनाया था मेरे को, और गीता पर रुचि थी, फिर संस्कृत पढ़ने लगा का तो रुचि मेरी गीता पर और बढ़ी, और महाराज से कहा मुझे तो मैं गीता पढ़ा दो, तो प्यार से कहते कि तुम व्याकरण पढ़ लो फिर गीता पढ़ लोगे, तो मेरा विचार ज्यादा पढ़ाई करने का नहीं था, पारमार्थिक तत्व क्या है इसको मैं जानू, ठीक पहचानू, अनुभव करूं, ऐसी लगन थी उस बचपन में भी, पूर्व का संस्कार होगा क्या होगा पता नहीं, हम जानते नहीं, परंतु ऐसी रुचि थी, फिर पढ़ाई करी, तो हमारे विद्या गुरु जी महाराज ने कहा कि मैंने बूढ़े बूढ़े संतों को देखा है, वे पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते तत्वानुसंधान पढ़ते हैं, तो उसमें संस्कृत पंक्तियां आती है, वो पंक्तियां ठीक नहीं लगती तो व्याकरण पढ़ना शुरू करते हैं, फिर व्याकरण इतना पढ़ा नहीं जाता, तुम अगर पहले पढ़ लगे तो तेरे संदेह नहीं रहेगा, कौन आचार्य क्या कहता है उन बातों को भी तू आप से आप खोज लेगा, संस्कृत में मिल जाएगा, इस बार तुम पढ़ रहे, तो मैंने फिर व्याकरण पढ़ी और भी पढ़ाई करी, तो वही पारमार्थिक तत्व है, वो बहुत विलक्षण है और सज्जनों सबके लिए है। उसके बाद मेरे मन में विचार आया कि ये तत्व सुगमता से कैसे प्राप्त हो, एक धुंध सी मेरे, ये कई वर्षों बहुत वर्षों बाद विवाद की बात है, तो उस विवाद वो मेरे अभी तक चलती है, वो धुंध सुगमता से सरलता से जल्दी तत्व की प्राप्ति हो जाए, ऐसी खोज अभी तक मेरे चलती है, अभी तक सुनता हूँ, कहीं जाता हूँ, करता हूँ, तो उसमें मेरी धुन रहती है, सुगमता से तत्व सरलता से सबको मिल सके, हरेक उसको अनुभव कर सके, ऐसा कैसे हो जाए, तो इसमें बहुत कुछ मैं कहने में सुनने में आती है, बातें सुगम मिली है, ये मिली है, इस वास्ते कहता हूँ कि आप लोग अगर खोज करो तो जरूर मिलेगी, जरूर, ऐसा नहीं मैं तो जानता हूँ आप नहीं जानते, ये भाव नहीं है, वो तत्व जानने में सब बरोबर है, पढ़े हुए अपढ़ सब बरोबर, उस तत्व में एक ही है, अगर उस तत्व को न जाने तो संतों ने कहा पढ़े अपढ़े सार के जो आत्म नहीं लख, सिर शादी चित्र तथा दोनों डूबण पख, चित्र एक पत्थर होता है अड़घड़ पर्वत में से निकला हुआ, और एक पत्थर होता है जिसमें सुंदर सुंदर मूर्ति बन जाती है, तो दोनों पत्थर में फर्क बड़ा भारी है, पढ़े लिखे होते हैं वो घड़े हुए पत्थर होते हैं, और बिना पढ़े अनघड़ टोल होते हैं, पर वे दोनों डूबने में कोई फर्क नहीं, बढ़िया से बढ़िया घड़ा हुआ भी डूब जाएगा और बिल्कुल अनघड़ वो डूब जाएगा, उसमें फर्क नहीं है, पढ़े अपढ़े सारखे जो आत्म नहीं लख, सिर शादी अचित्रता था दोनों डूबने पख, वो डूबने में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सुंदर लगता है वो सुंदर नहीं लगता है, ये इतना अर्थ इसमें फर्क है, पर तत्व समझा जाए तो वो महाराज इनसे विलक्षण है, इसमें उलझ जाता है ना विद्या में, तो ये उलझाव है, ये दो दो तरह की मोह है, गीता में आया है यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतिरिष्यति, तदा ग्रंथास निर्वेदम श्रोतव्य से श्रोत जैसे ये मोह कलिल है संसार का है। इसके बाद में दूसरा है कि श्रुति विपत्ति पन्ना से यदास्त्र श्रुति मन शास्त्र में सुना वो नारायण अद्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत शुद्ध अद्वैत द्वैताद्वैत अत्यंत भेदा भेद ये दार्शनिक बड़े भेद है अलग अलग संप्रदाय है तो वो श्रुति विपत्ति पत्ती है। जैसे संसार का मोह कलर है दल दल है जिसमें फंस जाता है ऐसे श्रुति विपत्ति पन्ना से इससे श्रुति विपत्ति पत्ती होती है। वो दर्शन ये कहता है वो दर्शन ये कहता है वो शास्त्र ये कहता है वो शास्त्र ये कहता है वो आचार्य ऐसा कहता है ये आचार्य ऐसा कहते हैं ये बड़ी भारी एक दल दल है बड़ी भारी एक आपस है ये आपस तो इसे निकलना बड़ा मुश्किल है। दो शरीर आपको बताइए यदि मोह कलिल है तो वहाँ स्त्री विपत्ति पत्ती है शास्त्रों के जो मतभेद का बात है वो समाध हो अचला निश्चला स्था सती तथा योगम आपसे तब योग को प्राप्त होगा। ऐसे गीता में 52-53 श्लोक है दूसरे अध्याय के उसमें ऐसा वर्णन आया है और उसको तर जाने के बाद फिर स्थित वर्ग होता है उसके लक्षण अर्जुन ने पूछे भगवान ने कहे तो गीता में कुछ बड़ी विचित्र विचित्र बातें लिखी गीता में। ये गीता का आश्रय लिया जाए तो मेरे को बहुत विलक्षण मालूम देती बहुत विचित्रता मालूम देती है। हरेक दर्शनों में इतनी नहीं है छोटा सा ग्रंथ पर गहरा तत्व इसमें बताया है वो जल्दी जल्दी आदमी पार पा ही नहीं सकता जल्दी काम बहुत उम्र लगाने पर आदमी पार सकता। हरि अनंत हरि कथा अनंत है जिसकी कथा अनंत है लीला अनंत है भगवान अनंत है उनके भावों का सिद्धांतों का कहाँ तक अपार हो। मनुष्य एक साधारण दिखता है उसके भावों का भी जल्दी अंत नहीं आता। इस तरह से गीता में बहुत विचित्रता बात मिलती है तो औरों ग्रंथों में इस तरह से है संतों की वाणी में भी ऐसा है जितना गहरा उतरेगा उतना उनका लाभ विशेषता से होगा। तो मैं देखता हूँ अब मैं पद सुनता हूँ तो मैंने ध्यान पूर्वक सुने बहुत विचित्र तत्वों का वर्णन है अच्छी तरह से ही बहुत विलक्षण तत्वों वर्णन है। तो वो सिद्धांत में तो वे तत्व आते हैं पर प्रक्रिया में नहीं आते ये प्रक्रिया संतों की और है वेदों की और है वेदिक और स्मर स्वर स्रोत और स्मर वो है इनका तो आपस में मिलान है पर दूसरे संप्रदायों का मिलान नहीं है। इसमें एक ऐसे संत मत एक विलक्षण मत है वो वह उसका भी बड़ा विचित्र है। उनमें मुख्य कबीर जी महाराज माने जाते हैं मैंने अपने गुरुजनों से भी सुना है कबीर जी महाराज चक्रवर्ती संत हुए संत मत में बहुत विलक्षण अगर पहुंचे हुए कबीर जी का नाम आता है। फिर दादू जी महाराज है फिर कई तेरे संत बहुत से हुए हैं उनका वर्णन आता है। तो वो तत्व है वो तत्व आप पढ़ करके समझ सकते हैं बिल्कुल बिना पढ़े हुए भी तत्व को समझ सकते हैं जिसकी जिज्ञासा हो उस तत्व को समझे तो बड़ी सुगमता से प्राप्त हो जाती। जिसका मैं वर्णन करता हूँ कि भाई ये है सीधी सीधी बात है कि संभा है कि मनुष्य है कि पशु है कि पश है कि ईट है कि चूना है पत्थर है ये पत्थर है इसमें जो ये ईट चूना पशु पक्षी मनुष्य को निकाल कर है को जाए इनको छोड़कर एक है को पकड़े तो उस तत्व की प्राप्ति हो जाए। ऐसे एक ज्ञान को है सत्ता हुई और चेतन है जो ज्ञान है समझे पुत्र हुआ तो उसका ज्ञान होता है पुत्र मर गया तो उसका ज्ञान होता है घाटा हो गया तो उसका ज्ञान होता है नफा हो गया तो ज्ञान होता है। तो नफा घटा मिलता नहीं जन्म और मन दोनों मिलते नहीं पर ज्ञान में भेद होता नहीं ज्ञान एक ही होता है नफे का नुकसान का मरने का जन्म का एक ही ज्ञान होता है। तो ज्ञान मानु चेतन है मानु सत तो सत चेतन और आनंद आनंद का ऐसा प्रश्न नहीं है आनंद एक बहुत विलक्षण है। आनंद में दो भेद हो जाते हैं एक शास्त्रीय ज्ञान है एक लौकिक है उसमें शब्द स्पर्श रूप रस का सुख होता है इस सुख में जाने से वो आनंद तक नहीं पहुंचता। सुख वो तो है दुख के जोड़ी वाला है सापेक्ष है आनंद एक निष्पक्ष तत्व है उस ऐसे सच्चिदानंद तत्व का वर्णन आया है। तो उस तरफ चले तो बड़ी सीधी सरल बात है वो मैं बता रहा हूँ है पर एक परिपूर्ण है स्वर्ग है कि ये नरक है कि ये मृत्यु लोक है, ये अच्छा है कि ये मंदा है, कि ये भला है कि ये बुरा है, कि ये अनुकूल है कि प्रतिकूल है, उसमें है न फर्क नहीं है। तो इन झंझट को छोड़कर है में सिद्ध हो जाए तो सीधा तत्व तो मिल जाएगा, बड़ी सुगमता से होता तत्व मिल जाएगा। थोड़ा सा विश्लेषण कर दे, जो परिवर्तनशील है अपरिवर्तनशील है में है नहीं बदलता है, पदार्थ बदलते हैं वो माया और माया का कार्य है, और नहीं बदलने वाला पारमार्थिक तत्व है। उस न बदलने वाले पारमार्थिक तत्व को संतों ने और तरह से वर्णन किया है, शास्त्रों ने और तरह से वर्णन किया है, आचार्यों ने और तरह वर्णन, अलग अलग भेद ये आचार्यों के बिल्कुल वर्णन है, परंतु अंत में तत्व वही पहुंचेगा जो सच्चिदानंद तत्व है, इसमें पहुंचेंगे। पर प्रक्रिया में उलझ जाने से वो जल्दी मिलता नहीं, तो प्रक्रिया का आदर करना चाहिए परंतु उलझना नहीं चाहिए। उसमें बस यही है दूसरा रद्दी है, ये ठीक है तो दूसरा रद्दी है, ये पक्ष आदमी का पसंद करने वाला है और ये ठीक है, इसे अनुभव करो, ये सिद्धांत करने वाला बहुत बढ़िया चीज है। परंतु मनुष्य के पक्षपात किया हुआ उम्र बीती उसमें पक्षपात हो जाता है तो वही अटक जाता, फिर आगे नहीं चलता। तो सार बात कहने की ये है कि परमार्थ जिज्ञासु को किसी मत के बीच में उलझना नहीं चाहिए, मत के अनुसार चलना चाहिए, उनमें जो विधान है ऐसा करो उसका चले तो फिर उसमें फायदा होगा, इसमें संदेह नहीं है। उस तत्व की जिज्ञासा भीतर हो तो उसको हरेक जगह मिल जाएगा वो तत्व। ये थोड़ी प्रार्थना आपसे करी है, इसमें कोई पूछने का मतलब आप पूछो, पूछने से बिल्कुल बातें बिल्कुल खुलेंगी। संक्षेप से बातें मैंने कही है, मैं पूछो आप।